देखते हैं हम तफसीर। इससे पहले हमने इस सूरत में क्या पढ़ा? हमने अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां देखी जो कि हम पहले भी देखते थे, इन निशानियों से गुजरते थे, मगर यहां पर कुरान पाक में उनको इसलिए जिक्र किया गया कि इंसान उनके ऊपर गौर फिक्र करे और उनसे अपने रब को पहचाने। क्योंकि हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, मगर उसकी निशानियों से, ये सब जो है ना, ये आयात है, एक आयते कुराने पाक में और एक आयात जो यानी आफाक में और अनफुस में, अल्लाह ताला ने दोनों निशानियां रखी। अनफुस यानी हमारी जानों में निशानियां, हम कैसे पैदा हुए, हमारा मरना, हमारे जो सारी ऑर्गन्स हैं, हम जो जिस तरह से हम हमारी जिंदगी है उसमें सब में निशानी है। इसी तरह आफाक में यानी ये कायनात के अंदर निशानियां अल्लाह ताला ने बिखेरी हुई हैं और हर निशानी अपने बनाने वाले का पता देती है। अब आपका काम क्या था इसमें? सबक तो बहुत आसान था, लेकिन आपका काम ये था, और उम्मीद है कि आपने ये काम किया होगा कि आपने रंगों को देखा होगा। और मैंने आपको कहा था ना, एक नज़र देखें अपने सामने, जो भी सीन है आप बाहर निकलें, अपने सामने आसमान है, जमीन है, उसको एक नज़र भर के देखें, और फिर अगर आप लिखने लगें कि कितने रंग हैं जो आपकी एक नज़र में आ रहे हैं और कितने शेड्स हैं हर रंग के, तो आप लिख नहीं सकते, आप हैरान हो जाएंगे। ये निशानियां गो के हम जब से दुनिया में आए हैं देख रहे हैं, मगर इस नजर से देखना कि इनसे रब की पहचान हो जाए, इस नजर से देखने का कुरान ने हमें सिखाया है, हमें खुद नहीं पता था। इससे पहले बेशुमार दफा हम गुजरते रहे, रंगों को देखते रहे, मगर हमने कभी ऐसे नहीं देखा होता जैसे कुरान हमें सिखाता है और जैसे अल्लाह ताला चाहता है कि हम देखें। लिहाजा हमारा ये इन्हीं आयात से हमारा होमवर्क यही होता है कि हम जो आयात पढ़ते हैं उसके बाद देखें कि इनको प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, इनके साथ पूरे वीक में क्या करें। हम पढ़ तो लिया, कुछ ने नहीं सूरज देखा हुआ। एक वो जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी सूरज देखता है, वो भी दिन और रात देखता है, वो भी चौपायों को देखता है, अनाम को देखता है, वो भी रंगों को देखता है, वो भी जानता है कि मैं, किसी ने मुझे पैदा किया है, मैं खुद तो नहीं पैदा हो गया, मैंने अपने आप को खुद नहीं बनाया। लेकिन उसमें और एक मोमिन की नजर में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताएं? एक वो जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, एक वो इंसान जिसकी फितरत सलीम है, इसकी फितरत में कोई करप्शन नहीं अभी हुई, उसकी नजर में और एक काफिर की नजर में बहुत फर्क होना चाहिए। अगर हम भी अल्लाह ताला की निशानियों से उसी तरह गुजरते रहें जैसे काफिर गुजरता है, तो फिर मेरी और उसकी नजर में क्या फर्क रह गया? जबकि कुरान कहता है कि जब आप गुजरो सीरो फिल अर्द के, अभी भी आ जाएगा आज के सबक में, देखो घूमो फिरो, चलो फिरो, देखो अल्लाह की निशानी, कई निशानियां देख के अल्लाह को पहचानो, कई कौमों को अंजाम देख के अल्लाह ताला को पहचानो। तो ये सिर्फ पढ़नी ही नहीं है, इनको इस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई करना है हमने, ठीक है? हालांकि कोई ऐसा चीज नहीं कि आप कहें कि कौन सा हुक्म है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है इसके अंदर, इसमें रोजा रखने का हुक्म नहीं, लेकिन इसमें गौर व फिक्र का हुक्म है, ठीक है? तो इसको गौर व फिक्र करके इन पे अमल किया करें। सहाबा तो अगले सबक ही नहीं लेते थे जब तक उन आयतों पे अमल नहीं कर लेते थे। आज का जो सबक है, और आयत नंबर 89 तक हम, यही दो टॉपिक्स हैं जिनको हम लेकर साथ चलेंगे। एक है तौहीद का इस बात, तौहीद की वो के बताया गया, और शिर्क की नफी की गई, शिर्क का इनकार किया गया, और मुशरिकीन के इतराजात के जवाबात दिए गए। जैसे कि आपने स्टार्ट ऑफ द सूरा में देख लिया था कि इसका मतलब कोई ना कोई, वो उन्होंने सवाल किया, वो कोई इतराज किया होगा, उनका सवाल या इतराज नहीं मेंशन किया गया लेकिन उसका जवाब दे दिया गया। आज के सबक में हम क्या देखेंगे? बहुत अहम एक टॉपिक देखेंगे, एक काफिर का दुनिया से जाना और एक मोमिन का दुनिया से जाना कितना फर्क होता है वो देखेंगे, और तौहीद को भी हम देखेंगे। और हमने पहले आला अल्लाह से यानी अल्लाह की जो निशानियां हैं नेमते हैं उनसे अल्लाह ताला की पहचान की। अब भी अय्याम अल्लाह यानी वो दिन जिनमें कौमों के ऊपर कोई अजाब आए उनसे भी अल्लाह ताला को पहचानेंगे। तो देखते हैं आयत नंबर 22 से। नौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह जो है ना बस एक ही है, एक ही इलाह है जिसकी प्रैक्टिकली हम क्या जिस तरह से हम बोल के इस बात को कैसे कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। पैगंबर बेशुमार आए, सहाबा बेशुमार हैं, ताबईन बेशुमार, औलिया अल्लाह बेशुमार, लेकिन तुम्हारा रब सिर्फ एक है, दो नहीं है। और यही वो अकीदा है जिसके अंदर शैतान की बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि इसमें कोई मसला डाले। इंसान के ऊपर अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो कहता है क्या तू मुश्किलों से तुझे तो कोई निकालने ही नहीं आया, कहाँ है खुदा, कहाँ है वो। ठीक है, कोई अल्लाह रसूल को मान भी जाए ना तो अगला उसका अटैक क्या होता है कि वैसे ना माने जैसे पैगंबर ने बताया। और ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए खुदा का मानना बहुत सारे लोग मानते हैं, ये जो मुशरिक है ना ये भी मानते हैं कि कोई खुदा है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये नहीं है फोकस इस बात के ऊपर कि खुदा है, कोई खुदा एक ही है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, एक है वो। वो मान तो लेते हैं, इसी तरह बहुत सारे मुसलमान भी ये मान तो ले रहे हैं कि हाँ खुदा है, लेकिन वो उस खुदा के साथ ही औरों को भी खुदा बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोगों के अकीदे खराब होते हैं यहीं पे आके। अल्लाह को तो मान लिया मगर वैसे नहीं मानना जैसे पैगंबर ने बताया आके। ठीक है, मानना वैसे है जैसे पैगंबर ने हमें बता दिया, तालीम दे दी कि अल्लाह ताला ऐसे है, और रब ने खुद बता दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये है मनहज, इसको क्या कहते हैं, मनहज, तरीका, किस तरह, रास्ता। तो इंसान इस मनहज के मुताबिक अल्लाह पर ईमान लेकर आए फिर उसका अकीदा सही होता है। हमने मान लिया कि एक खुदा है, चलो मान लिया, उसके बाद खुद ही अपनी तरफ से कुछ और मनहज बना लिया जैसे शैतान ने बताया या दूसरे इंसानों ने, शैतानी किस्म के इंसानों ने बताया, वैसे मान लिया तो वो काबिले कबूल नहीं है। और शैतान का यही पहला वार है कि इंसान तो अल्लाह रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, ये तो सीधा सीधा कुफर हो गया ना। दूसरा फिर अगर वो मान लेता है तो फिर यहां पे आके अटैक करता है कि वैसे ना माने जैसे रसूल ने बताया। इसीलिए आज इस मनहज में बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को वैसे नहीं मानते जैसे रसूल ने बताया, अपनी मनमानी उन्होंने चीजें बनाई हुई है। और इसी वजह से अकीदे को सीखना बहुत जरूरी है। मसलन कह देंगे कि अल्लाह ताला का हाथ नहीं, हाथ यदुल्लाह की जब बात आती है तो वो उसकी कुदरत है, उसका हाथ तो है ही नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाता है हाथ तो हमने कहना है हाँ अल्लाह का हाथ है, उसका चेहरा है, उसकी पिंडली है, ये सब अल्फाज कुरान में है, वो है, लेकिन कैसे है। वो कहते हैं अगर आपने हाथ मान लिया तो हमारे हाथ जैसा हो गया। हम अल्लाह का गुस्सा नहीं मानते क्योंकि अगर गुस्से में वो आ गया तो जैसे हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे नथने फूल जाते हैं, हमारी रगें फूल जाती हैं, हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, तो हमने कहना ही नहीं है अल्लाह को गुस्सा आया, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे कह दिया तो फिर उसके लिए भी यही मानना पड़ेगा। हम और फिर वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला किसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जैसे हम मोहब्बत करते हैं हम अपनी मोहब्बत में मजबूर हो जाते हैं, तो क्या वो मजबूर हो जाएगा? ये सब बातें गुमराही की बातें। देखिए कैसे शैतान आके मनहज के अंदर रखने डालता है, उसको खराब करता है। हम कहते हैं हाँ अल्लाह का हाथ भी है, उसकी पिंडली भी है, उसका चेहरा भी है, लेकिन जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला गजबनाक भी होता है, क्योंकि कुरान में है जिन पर अल्लाह गजबनाक हुआ, अल्लाह ताला मोहब्बत भी करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम करते हैं, जैसे उसकी शान के लायक है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और यहाँ पे बड़े लोगों के फिरके बने और उन्होंने तरह तरह के अपने रास्ते बना लिए, और इस तरह से जो सही अकीदा है उससे हट गए। तो अल्लाह ताला के बारे में भी हमें सही अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला हर जगह, इस कमरे में भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, तो क्या ये क्या अकीदा है? हम कहते हैं अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो अर्श पे मुस्तवी है। कैसे है? जैसे उसकी शान के लायक। हमें कैफियत नहीं पता, हम बस ये कहेंगे जो कुरान में है कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। हाँ वो अपनी कुदरत, अपनी इल्म, अपनी समात बसारत, उसके लिहाज से हर जगह पर, अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह को अल्लाह ताला जानता है, उसकी कुदरत हर जगह पे है, उसका इल्म हर जगह पे, लेकिन वो अपनी जात के लिहाज से हर जगह पे है, ये गलत है कहना। वो अर्श पे मुस्तवी है, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए। यहीं पे अल्लाह होता, इस कमरे के अंदर, इस जगह उस जगह, तो फिर क्यों जाना पड़ता था उनको? और अल्लाह ऊपर है, इसीलिए इंसान भी ऊपर को हाथ उठाता है, उसकी फितरत में है। तो बहुत जरूरी है कि हम अकीदे की इन बारीकियों को समझें, और बहुत सारे लोग इनमें गुमराह होते हैं। तो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही तुम्हारा इलाह है। और यहां पर आकर फिर शैतान कहता है कि नहीं, वो भी है जिससे, जिसके पास कुछ पावर है, और वो भी है, और वो भी है। और आप इससे पीछे देखें ना, उन आयात के साथ ये आयत कनेक्टेड है कि वो लोग जो पुकारते हैं, पुकारने, इबादत की बात नहीं आई, वल्लदीन यदअउना, जो पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा औरों से। अल्लाह के सिवा और में क्या आ गया? अल्लाह के अलावा हर चीज आ गई ना, चाहे वो कोई बुत है, चाहे वो कोई नबी है, चाहे कोई औलिया अल्लाह है, चाहे राम सीता या कोई नबी, कोई ईसा अलैह सलाम है, नबी अलैह सलातो वसलाम है, सब मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह के सिवा है। अल्लाह ताला के अलावा हर चीज, जिसको भी कोई पुकारता है, वो ना तो वो कुछ पैदा कर सकते, वो खुद पैदा किए गए हैं, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और उनको ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। चार सिफात सब में आ गई, तो सब हर तरह की शिर्क की नफी अल्लाह ताला ने कर दी यहाँ पे, और बता दिया कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है। फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरती, जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल इनकारी हैं, उनके दिल नहीं मानते। क्योंकि देखिए जो ईमानियात है ना, वो सारी अटैच्ड है, अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर पर, मलाइका पर, सब ये सारे ईमानियात अटैच्ड है। एक का भी इनकार दूसरे का इनकार है। आखरत पर जो ईमान नहीं रखते वो अल्लाह ताला का भी इनकार कर देते हैं, उनके दिल अल्लाह ताला के भी इनकारी होते हैं, और वो तकबुर करने वाले, मुस्तकबिरून है, इस्तिकबार करते हैं। तो इलाह तो एक ही है, और अल्लाह ताला ने निशानियां हमें पहले दिखा के और इस चीज को साबित किया कि देखो अगर एक से ज्यादा इलाह होते तो ये कायनात ना चल सकती, इनका बनाने वाला भी एक, इनका चलाने वाला भी एक, तो फिर इबादत भी उस एक की ही होनी चाहिए, इलाह भी वो एक ही है। इलाह की डेफिनेशन जो है ना, वो उर्दू में हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके लिए कोई एक वर्ड नहीं है, इलाह के लिए कि कोई एक वर्ड हो, मगर इलाह का मतलब यह है कि जिसकी हकीकी तौर पर जो इबादत के लायक है, बंदगी के लायक है, जिससे आप सारी अपनी उम्मीदें अटैच करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा खौफ रखा जाए, जिससे सबसे ज्यादा कुदरत का मालिक जिसको समझा जाए, यानी खौफ, मोहब्बत, इबादत, इसमें एक उसी को सबसे टॉप के ऊपर, वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और आखरत पर जो ईमान नहीं रखते, वो ही एक से ज्यादा खुदाओं की बात करते हैं या झूठे खुदाओं की बात करते हैं। और वो कैसे लोग हैं, वो बड़े खुश होते हैं औरों का जिक्र करके, जैसे कोई ढेरी, कोई फलां कबर, कोई करामतों वाला, वो करनी धरनी वाले, वो बड़े फलां, वो बड़े पहुंचे हुए, ये करते हैं। और उनको तौहीद समझ नहीं आती, क्योंकि आखरत का कॉन्सेप्ट उनके अंदर वाजे नहीं है। आखरत का मुशरिकीन में ना एक बड़ा मसला था, वो कहते थे जब मट्टी हो गए तो कहां किसने उठाना है। जब आखरत का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होता, तो फिर या उनको ये था कि हमारे यही सिफारिशी है, यही अल्लाह के यहाँ भी हमें छुड़ा लेंगे। जब आखरत में मसला होता है ना, तो फिर वो जाके उन सिफारिशियों के आगे ही माथा टेकेंगे, उन्हीं को खुश करेंगे, फिर अल्लाह ताला को खुश करने की क्या जरूरत है। फिर चादरें भी आप उनके पास ही चढ़ाएंगे, क्योंकि ये राजी हो गए तो हमारी बिगड़ी बन गई, हमारी आखरत सही होगी। तो बेसिकली आखरत के कॉन्सेप्ट के अंदर मसला है, उसकी वजह से तौहीद में भी मसला आता है। आखरत के कॉन्सेप्ट में क्या मसला है कि आखरत का कॉन्सेप्ट वाजे नहीं, कि वहां कोई नहीं छुड़ा सकता, वहां कोई मेरी बिगड़ी नहीं बना सकता, वहां पे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, एक अल्लाह ही है जिसके आगे मुझे खड़े होना, वहां मैं किसी का दामन पकड़ के मैं पार नहीं हो सकती। जब जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, तो पीछे देखें सारा खराब हो जाता है अकीदा तौहीद। समझ आ गई कि कैसे आखरत के अकीदे से, आखरत के अकीदे में खराबी से तौहीद का अकीदा भी खराब हो जाता है। ठीक है, और आखरत में क्या क्या शामिल है, जो मरने के बाद जो कुछ है ना, वो सब आखरत है, चाहे वो कब्र है, चाहे वो हशर है, चाहे वो मीजान है, चाहे वो हिसाब किताब है, चाहे वो पुल सिरात है, ये सब ईमान का हिस्सा है। तो जिनके अंदर आखरत पे ईमान नहीं है, या आखरत के ईमान में वैसा ईमान नहीं जैसा, याद रखिए एक चीज होती है ईमान लाना किसी चीज पे, एक है हमारे से सिर्फ ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम सिर्फ ईमान लेकर आए, हमारे से रिक्वायर्ड ये है कि हम वैसा ईमान लेकर आए जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आके बताया। मुशरिकीन भी, बाज मुशरिकीन देखे ना, ईमान रखते तो थे आखरत पे, वो कहते ही थे ना कि आखरत में हमें ये छुड़ाएंगे, इसका मतलब उनका ईमान तो था कि आखरत कोई है, था ना। बाज ऐसे थे जो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, वो कहते थे मट्टी हो जाएंगे तो उठेंगे नहीं, एक बाज लोगों का ये ईमान था। बाज मुशरिकीन का ये था कि नहीं, उठाए तो जाएंगे लेकिन ये लोग हमें छोड़ा लेंगे। तो यानी आखरत पर ईमान वैसा होना चाहिए जैसे नबी सलाम ने बताया, अल्लाह पर ईमान वैसा होना चाहिए जैसे आप सल्लम ने हमें समझा दिया, रसूलों पे ईमान वैसा होना चाहिए जैसे आप सल्लम ने बताया। समझ आ गई बात की नहीं, है ये बहुत जरूरी बात है। नॉट ओनली कि हम कह दें हमारा ईमान तो है, हमारा ईमान तो है इज नॉट इनफ, आपका ईमान वैसा होना चाहिए, क्या वैसा है जैसा नबी सलाम ने समझा दिया। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको वाजे करना चाहती हूँ। तो इसलिए याद रखिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मैं ईमान रखती हूँ। ईमान कैसा रखती है, ईमान तो वो भी रख रहा है, वो भी कोई भी, आप काफिर से भी पूछ ले, वो भी कहता है हेल और हेवन है, तो व्हाट, उसने अपना ही एक तरीका बनाया हुआ आखरत का, उसने अपना ही एक कोई कॉन्सेप्ट है उसके जहन, तो मैंने भी कहीं खुद ही से तो नहीं बना लिया हुआ। ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया आखरत के बारे में। जो उन्होंने बताया वही हर्फ आखर है, फाइनल। उसके बावजूद कई लोग अगर ये समझें कि कब्र का अजाब कोई चीज नहीं होता, कब्र में कुछ सवाल जवाब नहीं है, कब्र का हिसाब किताब कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्या है उनका, इसका मतलब खुद ही अपना आखरत का अकीदा खुद ही बनाया हुआ। वह मुस्तकबिर, उन्होंने तकबर करते हैं। तकबर होता क्या है, हम ना बहुत लिमिटेड हमारा कॉन्सेप्ट है तकबर के बारे में, हम समझते हैं तकबर ये है कि वो देखो उसने बड़ी गाड़ी ले ली ना, बड़ी मुतकबिर हो गई है, ये समझते हैं ना सिर्फ तकबर को, बड़ा अपने आप को समझना शुरू हो गई। ठीक है, ये भी तकबर है कि इंसान को कोई नेमत मिल जाए तो उसके बाद वो दूसरों को हकीर समझने लगे, लेकिन तकबर की जो डेफिनेशन है ना, वो है बतरुल हक व गमतुन नास। बतरुल हक का मतलब क्या, हक का इनकार कर देना, जो सही बात है, जो सच बात है उसका इनकार करना, और गमतुन नास वही मीन तो से यानी लोगों को हकीर समझना। तो ठीक है, वो भी तकब्बुर कर रहा है जिसने बड़ा घर ले लिया और वो अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है, वो भी तकब्बुर कर रहा है जो ब्रांड नेम कपड़े पहन के दूसरों को खातिर में ना लाए, वो भी तकब्बुर करता है जो अपनी जात और बरादरी को ऊंचा समझे, अपनी जुबान बोलने वालों को ऊंचा समझे और दूसरों को ये क्या चीज है, और वो भी तकब्बुर कर रहा है जो बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या फिरौन समझने लगता है। लेकिन ये भी तकब्बुर है कि इंसान हक का इनकार करे, जब हक उसके सामने आ गया, जब बता दिया ये कुरान में है, ये हदीस में है, तो वो कहे नहीं जी मुझे तो नहीं, मैं नहीं बात समझती सही, मैं तो नहीं इसको मानती, ये तकब्बुर का रवैया है। वेरी फ्यू पीपल नो कि ये तकब्बुर का रवैया है, ये तकब्बुर होता है, समझ आई बात। तो इनकार से जो सही सच बात है, हक बात है ना, तो इसलिए मैं सही सच कह रही हूँ क्योंकि बाज लोगों को हक ही नहीं समझ आता हक क्या, मैं वहां हक हक कहते रहूं और आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा हक क्या चीज होती तो आप कहें पता नहीं क्या कह रही। तो जो सच्ची बात है उसका इनकार, जो सही बात है, और सबसे सच्ची बात किसकी हो सकती, अल्लाह और रसूल के सिवा और किसकी बात सबसे ज्यादा सच्ची हो सकती, उन्हीं की तो सबसे सच्ची बात है, तो उनकी बात का इनकार कर देना ये हक का इनकार करना। और दूसरा लोगों को हकीर समझना। अब कोई देखा कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता कि मैं तो अल्लाह ताला का इनकार करता हूँ, वो रसूल का इनकार करते थे, रसूल की बात का इनकार करते थे, वो सोचते थे ये क्या चीज है, ये हमें बताएंगे आप, हदीस में आता है सुभान अल्लाह, ये बहुत समझने वाली बात है, याद रखिएगा इस हदीस को कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के लिए काफी है उसके बुरा होने के लिए कि वो अपने किसी भाई को अपने से हकीर समझे, या अल्लाह तुम हमें माफ कर देना, आदमी के बुरा होने के लिए क्या काफी है बताएं, क्या काफी है आदमी के लिए बुरा होने के लिए, चाहे वो बड़ा अपने आप को नेक साले पाकबाज तहज्जुद गुजार नमाजी परहेजगार मुत्तकी कुरान पढ़ने वाले कुरान के स्टूडेंट कुरान की टीचर फला बड़ी अपने आप को चीज समझे, लेकिन उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने किसी भाई को अपने से हकीर समझे, ये हकारत, चाहे वो अपनी नेकी की बुनियाद पर हो कि पर्देदार जो खवातीन है जिसने हिजाब ले लिया अबाया पहन लिया वो हकारत से देखे दूसरों को ये क्या चीज है, या वो जो मॉडर्न है वो समझे ये क्या बड़ी पर्देदार बनी फिर रही है, पता है इनके करतूतों का, ये क्या है हकीर समझना, यहाँ जो मस्जिद से निकला है वो दूसरों को देखे और ये क्या चीज है मस्जिद भी नहीं जाते, यहाँ जो जिस जो किसी खास जात बरादरी से वो ये कहे और ये क्या चीजें हैं, ये कुछ नहीं है इनकी कोई हैसियत नहीं, तो इंसान के बुरा होने के लिए तेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये चाहे माल में है, चाहे घर बार में है, चाहे खानदान कुंबे कबीले बरादरी जुबान इल्म अमल दीन किसी बुनियाद पे भी, नेकी किसी बुनियाद पे भी, जब आपने सोच लिया ना या आपकी बातों के अंदर ये बात है कि ये क्या चीजें हैं, तो इट मीन्स कि आपने अपने आप को बड़ा बना ही लिया ना, अपने आप को नेक समझ ही लिया, दाढ़ी वाला वो कहता है ये क्लीन शेव वाला क्या चला फिरता है, ये क्या चीज है, ये नेकी का तकब्बुर है। एंड समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज कि हमें नेकी का तकब्बुर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। राई का दाना कितना होता है, एक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक जिसको आप देख भी नहीं सकते, इतना सा तकब्बुर भी, अल्लाह हमें माफ कर दे। जो हमारी बातें होती ना बाज दफा ऐसी होती हैं कि जिनमें तकब्बुर की बू होती है स्मेल, जब हम दूसरों को हकीर समझ रहे होते हैं हंस रहे होते हैं उनके ऊपर फलां ऐसी वो ऐसी, तो असल में हकीर ही समझा ना, मैं बहुत बड़ी शय हूं एक्चुअली, अपने से कंपेयर किया ना और क्या, अगर मैं खुद को भी अपने आप को हकीर समझ रही थी तो थोड़ी मैं कहती कि वो ऐसी है, मैंने तो कहना था कि मैं खुद क्या हूं, लेकिन मैं अपने आप को इतने ऊंचे पेडिस्टल पे बिठा लूं और दूसरों को सोचूं कि हाँ वो देखो जरा कैसे। याद रखिए एक बात, इसको ना जहन में बिठा लें इस बात को, वो नेकी जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए, वो नेकी जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए ना, उससे वो गुनाहगार बेहतर है जो आजिजी से झुका हुआ है। क्या मतलब? यानी ये जो खुद को नेक समझ के बड़ा बनना होता है ना, इससे वो गुनाहगार बेहतर है जो पता नहीं अपने रब के सामने कितना रोता हो, कितनी उसके शर्मिंदगी हो। वो कहता है मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं कितना घटिया हूं, सारे बड़े बड़े नेक हैं, मैं कितना छोटा हूं। उसकी पता नहीं आजी अल्लाह को कितनी पसंद आ जाए, मगर इस नेक आदमी की नेकी नहीं पसंद आएगी अल्लाह को, जो फूलता फिर रहा है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने शुरू हो गया, कुरान क्या पढ़ना शुरू कर दिया, 4 दिन हुए नहीं, वो अपने आप को समझते हैं कि जो सारा मेरे घर के लोग भी, ये मेरी फैमिली भी, हाय हाय ये कितने घटिया और गंदे हैं, और मैं कितनी नेक हूं ना। देखो तहज्जुद के लिए तो ये उठते नहीं है, कुरान तो ये पढ़ते नहीं है, पता नहीं क्या है ये तो जाहिल, ये तो ये। अल्लाह अकबर, हमें इल्म लेने के बाद ना तकब्बुर नहीं हमारे अंदर आना चाहिए। अगर वाकई हमारे अंदर सच्ची इल्म आया है ना, वाकई हमारे अंदर हमने कुछ सीखा है ना, बस ऊपर ऊपर का नहीं, वाकई हमारे अंदर अगर कुछ गया है ना, तो ये हमें झुका देगा, ये हमें आजीज बना देगा, आजी आएगी। और अगर हमने ये शैलो इल्म लिया ना, बस बातें ही हैं, बड़ी बड़ी बातें हमें करनी आ जाएंगी, लेकिन तकब्बुर आएगा फिर। इल्म का भी तकब्बुर होता है, नेकी का भी तकब्बुर होता है, दीन का भी तकब्बुर होता है। आप सोचते होंगे कि दीन वाले तो बड़े अच्छी बात है, लेकिन इसका भी तकब्बुर होता है। मैं जानती हूँ किसी को कि उसमें इतना खौफ खुदा है कि वो किसी की भी तकलीफ हो ना तो फौरन तड़प के मदद के लिए ऐसे लोग दौड़ते हैं। कोई एक फर्द की बात है, मगर फौरन, और खौफे खुदा इतना बेईमानी से डरते हैं, झूठ से डरते हैं। बस नमाजें वाजिबी हैं जितनी, 5 वक्त की नमाजें, कोई तहज्जुद गुजार नहीं है, कोई बहुत तस्बीहें करने वाले, जिक्र करने वाले इस तरह नहीं है, लेकिन उनमें खौफे खुदा है, सिला रहमी करते हैं, लोगों के साथ रहम का मामला करते हैं, हलाल खाने के लिए एहतमाम करते हैं, लेकिन उनके सरों पर टोपियां नहीं है, उनके उनकी हाल हुलिया ऐसे नहीं है कि वो लोग देख के उनको बड़ा नेक समझे, मगर वो रोते हैं अपने रब के आगे, और वो अपने आप को कहते हैं कि ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, मगर वो लोगों को धोखा देने से डरते हैं, वो नरम बात करते हैं, उनके अंदर रहम दिली है, वो फराइज अदा करते हैं, बहुत नवाफिल के अंदर नहीं है, लेकिन सीधी सीधी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरे सोच के क्या सोचते हैं, हम तो बड़े नेक हैं, इसमें क्या नेकी है। अल्लाह ताला ना आजी का इजहार देखना चाहता है इंसान में। अगर ये पढ़ लिख के हमारे अंदर आजी खत्म हो गई और खुद पसंदी आ जाए कि मैं बड़ी चीज हूं, खुद उजब क्या होता है, उजब उजब इसको कहते हैं, खुद पसंदी को, कि अपना आप बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाए, तो दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ये ख्यालात हैं ना, तो जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। बात ये कि इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं कोई चीज नहीं। हमने कहां से समझ लिया कि हम बड़े नेक हैं? कभी नेकों की बातें सुनी भी हैं कि क्या होती हैं? हमने असल में अंधों में काना राजा वाली बात है, 4 लफ्ज क्या पढ़ लिए बस हमने समझ लिया, अब हम जाहिलों में बैठे हुए तो समझते हैं हम बहुत बड़ी चीज बन गए। वो उनको एक भी नहीं लफ्ज आता, हमें एक आ गया, हमने उसमें ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया। तो खुद को ये नहीं देखे, खुद को देखें कि क्या मंजिलें हैं जो नेकों की थी, जो सालेहीन की थी, उनके तरीके क्या थे। उनको तो किसी के जूते उठाने में भी आर नहीं होती थी, वो तो किसी गरीब मिस्कीन के घर जाते भी आर नहीं समझते थे, उसके काम करने में अबू बकर सिद्दीक जैसे, वो अशरा मुबशरा उनके जैसे आदमी, वो एक बुढ़िया के घर जाकर उसके घर का काम कर रहे हैं, उनको तो नहीं शर्म आती थी। हम में से कितने लोग हैं जो अपने किसी आज तक नौकर के घर में भी हमने कदम रखा होगा। यार अब हमें माफ कर दे। हमारा अगर सिर्फ इसके ऊपर ही बात आ गई कि हमारे दिलों में क्या था, तो हम तो पता नहीं इस पे भी पास ना हो सके। हमारे अंदर कितना तकबर भरा है, अपनी बड़ाई भरी भी, किसी को किसी चीज का तकबर है। हमारी तो जो हमारी जिस जिस जगह से, जिन कंट्री से हम बिलोंग करते हैं ना, वहां पे तो ये भी तकबर बहुत ज्यादा है कि ना, हम तो ये जुबान बोलने वाले, या हम तो इस जात बरादरी से। ओह माय गॉड, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं है आप क्या दुनिया आसमान से उतर के आई कोई मखलूक है, और दूसरे ऐसे लगते हैं ये क्या चीज, कमी कमी ये वर्ड है जो हमारे यहाँ बोला जाता है। What is this? क्या ये तकबर नहीं इसे झलकता? तो क्या थे हजरत बिलाल, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या थे फिर? क्या कभी आप उनके लिए वर्ड बोल सकते? वो तो गुलाम थे, काले स्याह हबशी, कोई उनका स्टेटस नहीं था। कौन सी, कुरैश से थे क्या, बनू हाशिम से थे क्या? नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहाँ आगे आगे उनके कदमों की चाप सुन रहे हैं। और हम क्या चीज है, हम क्या चीज है, किस चीज का हमें तकब्बुर और मान और अपनी बड़ाइयां हमारे अंदर भरी, किस चीज का? चार लफ्ज आ गए इसलिए, कुरान पढ़ना आ गया इसलिए, हमने क्लासें लेनी शुरू हो गई इसलिए। तो ये इस खन्नास को दिमाग से निकाल दे, वरना ये हमें लेके टपो देगा, टपो देगा हमें। अगर हमारे अंदर तकब्बुर है, तकबर, ये दोनों चीजें हैं, हक को ना मानना और लोगों को हकीर समझ। मत करें दूसरों की बुराइयां, अगर हम अपने आप को हकीर समझते होंगे ना, तो हमारे मुंह से दूसरों की नहीं बुराइयां निकलेंगी। और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे कि कहीं हमारे दिल में कभी किसी दिन एक लम्हे के लिए भी एहसास आया हो, हम किसी पे हंसे हो, किसी को छोटा समझा हो, किसी की तरफ ऐसे देखा हो कि ये कोई चीज नहीं, क्या किसी बात की वजह से भी। इससे आगे मैं क्या जाऊं, अगर यहां ही इस आयत को ही हम पकड़ के बैठ जाएं, तो आगे क्या हम सबक करें? इसको ही, एक आयत को पकड़ के ही हम अप्लाई करें।